हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन फिलहाल वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली थी, बेटा जैसे जैसे ये सारी गलतफहमियां खत्म होती जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी वक्त मेरे झलक और सिद्धार्थ दोनों ही एक हो जाएंगे। और फिर कल मैं सिद्धार्थ और झलक का ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखना, जैसे ही कल झलक के बारे में फैली हुई गलतफहमियां सब लोगों के दिलों से साफ हो जाएंगी, तब देखना, तब सिद्धार्थ भी दिल से झलक को अपनाएगा और प्यार देने के साथ साथ इज्जत भी देगा और शादी के बाद उसे बहुत प्यार देगा। दादी की इतनी आत्मविश्वासी बातें सुनकर अनामिका थोड़ी हैरानी में डूब गई और फिर अपने मन में आए सवाल को रोक नहीं पाई और बोली थी, लेकिन दादी, कौन करेगा ये सब जब किसी ने कोई गलती ही नहीं की है। तभी दादी बोली थी, मैं आकांक्षा से बात कर चुकी हूँ, साथ ही आज ओबेरॉय परिवार को भी फोन किया है। मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय मीडिया में आकर कन्फेशन देंगे कि झलक उनकी अपनी बेटी है और सिद्धार्थ से शादी करने पर उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं है। चाहे आकांक्षा हो या झलक, दोनों ही उनकी बेटियां हैं और इसीलिए वे दोनों ही बहुत खुश हैं। ये सुनकर अनामिका थोड़ा चौंक गई और सोचने लगी थी कि आकांक्षा से भले ही वो एक बार ही मिली हो, लेकिन उसके जैसी नौटंकीबाज लड़की उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। क्योंकि जिस वक्त खुराना परिवार झलक और सिद्धार्थ पर आकांक्षा के मुंह पर पानी उछाल रहा था, अनामिका ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख चुकी थी। सब लोगों के जाने के बाद अनामिका वापस आकर गाड़ी में बैठ गई थी। वही आकांक्षा ने जब पंडित जी को पैसे दिए थे, वो दृश्य भी अनामिका ने अपनी आंखों से देखा था। वो सोच रही थी कि आखिर किस लिए उस लड़की ने पंडित जी को सारे पैसे दिए थे। लेकिन अब अनामिका को कुछ कुछ अंदेशा होने लगा था कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी की नज़रों से छुपा हुआ है। फिलहाल अनामिका ने दादी से ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा और सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा इस वक्त खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि दादी ने खुद फोन करके उसे इन्वाइट किया था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जो वो करना चाहती थी उसके लिए पार्टी में जाना बेहद जरूरी था। फिलहाल अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को इस पार्टी के पास रखना था, उसे बस अपनी माँ को कन्विंस करना था। इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। वो मायूसी भरी शक्ल बनाकर अपनी माँ के पास पहुंची और उन्हें गले लगाकर बोली, मॉम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरी बेटी, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो ना, क्या बात है। तभी आकांक्षा ने कहा, मॉम, मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। ये सुनकर नैना जी चौंक गई और सोचने लगी कि आखिर आकांक्षा को ऐसी कौन सी बात की जरूरत पड़ गई है। तभी पीछे से ईशान बोले, बेटा क्या बात है, बोलो ना, कुछ चाहिए क्या तुम्हें। तभी आकांक्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप झलक और सिद्धार्थ की रिसेप्शन पार्टी में चलें और वहाँ जो मैं बोलूँ आपको वही बोलना होगा। प्लीज़, आप मना नहीं करेंगे, आपको मुझसे वादा करना होगा। ये सुनकर नैना जी के माथे पर लकीरें पड़ गईं। वो सोचने लगी कि उसकी बेटी आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। वहीं ईशान बोले, लेकिन बेटा, हम अच्छे से जानते हैं, जरूर उस उर्वशी खुराना जैसी चालाक औरत ने तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया होगा और तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ वहाँ सबके सामने ये बोले कि उन्हें शादी से कोई एतराज़ नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कुर्बानी मत दो, ऐसा मत करो, तुम मेरी बात मानो। वैसे भी उस लड़की झलक को हम तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, बहुत जल्द उसका मामला खत्म कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी आकांक्षा ने जल्दी से अपने पिता को चुप कराते हुए कहा, प्लीज़ पापा, मुझे मॉम से बात करने दीजिए ना। मॉम, प्लीज़, आप मेरी बात सुन रही हैं ना, आप वही बोलेंगी ना जो मैं बोलूँगी, प्लीज़ मुझे वादा दीजिए। अब ये सुनकर नैना जी ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, वैसे तो मैं कभी ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहती थी कि उस लड़की ने तुम्हारी जगह ली है और उसने सिद्धार्थ खुराना से शादी की है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वही बोलूँगी, ये मेरा वादा रहा। ये सुनकर आकांक्षा के चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई और वो वहां से चली गई। वहीं वैभव के माथे पर बल पड़ गए। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी बहन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इस तरह से सिद्धार्थ खुराना की फैमिली को क्लैरिफाई करना चाहे। वो पूरी तरह से उन्हें सिचुएशन से निकाल देना चाहती है, जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये सोचकर उसने अपने कंधे उचकाए और सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी ओर झलक इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी। जो कुछ भी हुआ, ये सारी बातें याद आते ही उसे ऐसा लगा मानो किसी ने एक बार फिर से उसे भरी महफिल में बेच दिया हो, क्योंकि ये मनहूस वाला शब्द बचपन से ही उसके नाजुक वजूद पर थप्पड़ की तरह लगा चुका था। इस शब्द का असर अब भी उसके दिमाग में था और जब ये शब्द इस तरह से सामने आया, उसकी हैरानी और मायूसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और फटाफट अपने आसपास को देखा। उसने खुद को थोड़ा शांत किया। तभी थोड़ी देर बाद दादी अपने हाथ में एक बड़ा ही प्यारा सा गाउन लेकर उसके सामने आई और झलक को डिज़ाइनर गाउन देते हुए बोली, बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सारी मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन अब हम समाज की नजरों से बच नहीं सकते, और वैसे भी हमें समझ है कि अब हमें अपने आगे का काम पूरा करना होगा। वैसे भी हमारी सारी फ्रेंड्स और फैमिलीज, भले ही कुछ लोग हमारे परिवार के रूप में हमारे सामने खड़े हों, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों में साफ सुनाई दे रही है। कितने बड़े लोगों ने शादी भी कर ली और रिसेप्शन तक भी रहे। इसलिए हम तुम्हें अब पूरे समाज के सामने ऑफिशियल रूप से सिद्धार्थ और झलक सिद्धार्थ खुराना के रूप में घोषित करेंगे। अभी भी कुछ लोगों को तुम्हारे चेहरे की वजह से ये गलतफहमी है कि सिद्धार्थ की शादी आकांक्षा से हुई है। हालांकि मीडिया में सिद्धार्थ ने सारी चीजें अच्छी तरह से संभाल ली हैं, और तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम को लेकर जिस तरह की गलत अफवाहें चल रही हैं, उन्हें भी हम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए हमने आकांक्षा से भी बात कर ली है और वो तैयार हो गई है तुम्हारा नाम क्लियर करने के लिए। अब दादी की ये बात सुनकर झलक के मन में डर फैल गया। वो सोच रही थी कि आकांक्षा ने उसे साफ साफ धमकी दी थी कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो झलक का नाम बदनाम हो सकता है। इसके बाद मेरे पास शिवाई जान देने के कोई और रास्ता नहीं होगा। ये कैसे संभव है कि वो मेरे नाम को क्लियर करने के लिए सामने आए, जब आकांक्षा ने मुझे साफ साफ धमकी दी थी, वो भी कई बार। नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाली है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगर इस बार उसने पार्टी में बड़ा हंगामा किया तो सिद्धार्थ को लगेगा कि ये सब मैंने ही किया है। नहीं नहीं, इस वक्त झलक पूरी तरह सोच में डूबी थी और साथ ही साथ आकांक्षा की चालबाजी के बारे में पता लगाना चाहती थी। आखिरकार आकांक्षा के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उसे जानना जरूरी था। फिलहाल दादी की बात मानते हुए उसने अपने हाथों में गाउन ले लिया और कहा, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये कपड़े पहनकर रिसेप्शन में शामिल हूँ तो मैं जरूर आऊंगी। दादी ने प्यार से उसके गाल सहला दिए और उसे आराम करने को कहकर वहां से बाहर चली गई। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ हुराना ऑफिस में पहुंचा था। वहां पहुंचकर उसने फटाफट अपने पेंडिंग काम कंप्लीट किए। इस वक्त रोनित सिर झुकाकर खड़ा था। वो जानता था कि सिद्धार्थ हुराना उसके साथ आगे क्या करने वाला है। फिलहाल रोनित की टांगें पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन सिद्धार्थ हुराना के दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। और अब सिद्धार्थ हुराना के साथ कितना आगे तक जाना होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
जल्दी से काम खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ने गहरी नजरों से रोनित को देखा और कहा, चलो मेरे साथ, वक्त आ चुका है तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देने का। क्या सिद्धार्थ की सनक में चली जाएगी रोनित की जान? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।